पिछले अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशा में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लूटेरों ने घर बनाया, घर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिया। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वो बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया। वो प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तद अनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वो बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वो 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मरे गए थे। उसे स्थान पर उसने संधोपासना की और गीता के 3वें अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश से बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा, फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दी जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटियां का लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। ये दृश्य देखकर उसके चित्त का व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखता ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा दैववश मेरे निकट गीता का 3वें अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्टज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया, अतः आप घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय 3वें अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ये कहने पर पुत्र ने पूछा, तातः मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबको सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए, यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो, इससे वे समस्त पूर्वज मेरे ही तरह जातनाश से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद के प्राप्त हो जाएंगे। पिता की यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसे ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वो भी लौटकर जन्मस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3rd अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने के इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत जातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए जमराज के पास गए। जमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान जम ने विष्णु दूतों से जम लोकों में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष सज्जा पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर जम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदनमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वासस्थान के चले। जमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सज्जा बने हुए शेषनाग की फने को मनियों को प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे और हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर जोगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन जोगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों के आरोह ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान आपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भाषित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार भगवान की झांकी करके जमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। जमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है, आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाला भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्यमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि का नमस्कार है। समस्त देहधारी का पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है, जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लेपटे निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार हैं। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से महित नहीं होते हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी को प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे ही आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मन रहना ही उचित है, मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके जमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे यज्ञ और जो कार्य हैं उसे बताइए। उनके ये कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सिंचित होते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूं, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोगों के लेट जाओ, अपने लोग को लेट जाओ। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गया। जमराज भी अपने पुरी के लौट आए तो वो ब्राह्मण अपनी जाति को और समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता edification श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। तृतीय अध्याय है कर्मयोग। अर्जुन युवाच, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दनः तत्किं कर्माणि कोरे मां न्यजयसि केशव। व्यमिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयहं आप्नुयाम्। लोकेष्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणामनारम्भान् नैष्कर्मं पुरुष श्रुते न च सन्ना सदा देव सिद्धि समधिगच्छति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वप्रकृतिजयिनै। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमोरात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जस्तिन्द्रियाणि मनसा नियमाराभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्त स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जाय हि अकर्मणः शरीरजात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पूरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविशद्धम् एष वस्तिष्ठकामधु देवान् भवयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेया परम वाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता त्वयि दत्तान् प्रयाभ्य जो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषये भुञ्जते ते कथं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मदुभवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय इहाय आघायुरन्द्रिये रामो मोघं पार्थ स जीवति। जस्तात्मा रतिरेव श्याम आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थपाश्रय। तस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्त हि चरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जज्जदाचरति श्रेष्ठ स्तत्त देवी करो जनः सजत्रमान पुरुषे लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्याह्यम् वर्तते जातु कर्म नतीन्द्रितः ममावर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थो सर्वतः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदः शङ्करस्य च कर्तस्याम् कहन्नानिम प्रजा शक्ता कर्मन्न विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत पुर्जाद्विद्वान् तथा शक्त चिकीर्षो लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनये अज्ञानम् कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारो दुराहिना कर्ताहम् इति मन्यते तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागय गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्या न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्ता कृष्णभिन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्तात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्या युद्धस्व विगतजनः एते मतम् इदम् नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो नु श्रूयन्त मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः जेते तादभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढान्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशम् चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम् जान्ति भूतानि निग्रहम् करिष्यति इन्द्रियस्यन्वियष्टार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् सधर्मविगुणः परधर्मासनुष्ठिता सधर्मे हि धनम् श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन युवाच अथो केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयम् बलादेव नियर्जितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेना प्रियते वह्नी यथा दर्शो मलेन च जठलेन पृतो गर्भ तथा तेनेदम् आवृतम् आप्रीतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्कुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि पश्चाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्तेष ज्ञानमाप्रिक्तदेहिनाम् तस्मात्तमिन्द्रियन्नादौ नियम्म भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहीयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान्नाहु इन्द्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्तभ्यामात्मनामात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिव प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हम अब भगवद गीता का तृतीय अध्याय का कर्मयोग का जो श्लोक हम पाठ किए हैं उसका अनुवाद हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब सीधा पाठ करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को बश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है, वे निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म जो कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वो अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके कारण से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और जो वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, मैं जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनाशक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनाशक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्मों के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्व को जानने वाले हैं, वही भी वो कभी भी आपने आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित सामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराया कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ स्तर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण के संस्पर्श से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के विनाश स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि जो कृष्ण भावनामृत है उससे स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्री भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री तृतीय अध्याय की, कर्मयोग की, श्री कृष्णार्जुन संवाद की, संवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।